नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। प्रस्तुत है कहानी जुआरी। इसके लेखक हैं अश्विनी आहूजा। रामलाल की 3 जवान बेटियां थीं और 2 अच्छे खाते पीते कमाऊ भाई। रामलाल की बड़ी बेटी 26 वर्ष की हो चली थी, लेकिन उसके पास बेटी के विवाह के लिए पर्याप्त धन नहीं था। करीब 1 साल से वह बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन धन था कि उसके पास ठहरता ही ना था। रामलाल ने अपने दोनों भाइयों से 10-10 हजार रुपया मांगा। बिना कर्ज लिए उसकी बेटी की शादी हो जाए, इसके लिए उसने दोनों भाइयों की मिन्नतें की, लेकिन दोनों भाई खुशहाल होने के बावजूद अपनी तंगी का रोने लगे। अंततः रामलाल ने शहर के एक बनिए से मोटी ब्याज पर घर का कुछ सामान गिरवी रखकर 20 हजार रुपए उधार ले लिए। बेटी की शादी हो गई। अब रामलाल को कर्जा उतारने की चिंता थी। कर्जा क्या उतरना था, दिन प्रतिदिन मोटी ब्याज से रकम बढ़ती ही जा रही थी। कुछ वर्षों बाद कर्जे की रकम 20 हजार से बढ़कर 40 हजार तक पहुंच गई। उधर रामलाल की दूसरी बेटी भी 27 वर्ष की हो गई। रामलाल को उसकी शादी की चिंता स्तन लग गई। अब वह उसके लिए धन इकट्ठा करने का जुगाड़ करने लगा। उसे अपनी जवानी के वे दिन याद आने लगे, जब वह दोस्तों के साथ पत्ते खेला करता था और हमेशा जीत जाया करता था। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी तंग हाली से निजात पाने के लिए जुआ खेलेगा, लेकिन बदकिस्मती उसके साथ जों की भांति चिपटी हुई थी। वह जुए में अपना सारा कारोबार, वह दुकान तक भी हार गया। भाइयों ने सारे शहर में उसे जुआरी जुआरी कहकर जोरा पीट कर बेइज्जत किया। गली मोहल्ले वाले भी उसे ताने देने लगे। बेशर्म को शर्म भी नहीं आई। 2-2 जवान बेटियां घर पर हैं और वह जुए में अपना घर बार लुटा बैठा है। इन सब बातों का रामलाल के हृदय पर इतना गहरा असर हुआ कि एक रात उसने आत्महत्या कर ली। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बढ़कर खर्च किया। अनुमान है कि खर्चा 30 हजार से भी ज्यादा हो गया होगा। दहाके वाले दिन हुई शोक सभा में लोग बातें कर रहे थे कि अगर दोनों भाई मिलकर रामलाल को 20 हजार रुपया दे देते तो बेचारा आत्महत्या तो ना करता और ना ही धन कमाने के लिए जुआ खेलता। तभी रामलाल के एक भाई ने कहा, भाई अपनी अपनी किस्मत है, जो जैसा लिखा कर आता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है।
नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है कहानी कलेक्टर। लेखक हैं अश्विनी आहूजा। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था, बेहद लाडला व प्यारा, अनमोल रतन। नाम था प्रभदयाल। जब बेटला लाडला और अनमोल रतन हो तो माँ बेटे के बारे में कुछ ज्यादा ही सपने लेने लगती है। सुमित्रा देवी ने भी सपना लिया कि बेटा कलेक्टर बने। गांव में छोटा सा घर था, आमदनी के साधन सीमित थे। जब गांव के सरपंच व चौधरी तक अपने बच्चों को शहर के बड़े कॉलेज में भेजने के लिए 10 बार सोचते थे, तब सुमित्रा देवी ने बेटे के एक बार कहने भर से पति की अमानत पड़ी 7 एकड़ जमीन गिरवी रखकर और पैसा ब्याज पर उठाकर बेटे को नजदीक के गांव
के बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। बेटा पढ़ने के लिए गांव से शहर के कॉलेज में आने लगा। शहर के लिए गांव से सुबह शाम एक ही बस आती थी, सो बस में अत्यधिक भीड़ का होना स्वाभाविक था। बेटे को दिक्कत तो बहुत थी रोज रोज गांव से शहर आने में, पर माँ का सपना था कि बेटा कलेक्टर बने, और वह हर रोज फुर्ती से बस में सीट रोककर कलेक्टर बनने के लिए समय पर कॉलेज पहुंचने का पहला संघर्ष कर रहा था। जब दिल में उमंग और आंखों में सपने हों तो व्यक्ति कई बार अपने आसपास के यथार्थ को भूल जाता है। वह भी कई बार भूल जाया करता था कि उसके बेरहमी व लापरवाही से सीट पर एक सनकी की भांति कब्जा करने से किसी दूसरे को भी चोट पहुंच सकती है। बड़े लोग कहा करते हैं, हमेशा लक्ष्य पर नजर रखो, कहीं भी आसपास देखकर समय बर्बाद मत करो। फिर वह समय बर्बाद क्यों करें? जो लोग कलेक्टर बनने के सपने देखते हैं उनके लिए तो समय और भी ज़्यादा मूल्यवान होता है। इसलिए वह माँ का सयाना बेटा बनकर कभी भी सीट रोकने में देरी करके अपना मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करता था। आज बस भीड़ से कुछ ज़्यादा भरी हुई थी। रास्ते के एक गांव में मेला था। शहर के लोग मेले में प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे। एक तो बस पीछे से लेट थी, दूसरे वह भीड़ से भरी हुई थी। आज उसके संघर्ष की परीक्षा थी। बस के रुकते ही उसने लपक कर खिड़की के रास्ते अपनी किताबें भीतर फेंक दी, फिर बाहर टहलने लगा। जब व्यक्ति कोई काम समाप्त कर ले तो उसे बेहद सुकून मिलता है। उसने भी किताबें खिड़की के रास्ते से भीतर फेंक कर अपना पहला काम खत्म कर लिया था। फिर बस में सीट हासिल कर लेना तो आज उसके लिए जैसे एक जंग जीतने के बराबर था। थोड़ी देर बाद जब बस चलने को हुई तो वह बस के भीतर आ गया। उसे हैरानी हुई कि उसके कब्जा की हुई दोनों सीटों पर एक वृद्धा आकर बैठ गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया। अगर इस तरह वह अपना अधिकार किसी दूसरे को छीनने देगा तो कलेक्टर बनकर दूसरों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर पाएगा? तत्पश्चात उसने एक नवनियुक्त कलेक्टर की भांति उंगली का इशारा करके बुढ़िया को अपनी कब्जा की हुई दो सवारियों वाली सीट पर से उठने के लिए कहा। बुढ़िया ने प्यार से कहा, बेटा दो सीटों का क्या करेगा? उसने झूठ बोला, अभी उसका मित्र आने वाला है, दूसरी सीट उस मित्र के लिए है। बुढ़िया ने किंचित विरोध भी किया लेकिन उसने कतई परवाह नहीं की। कलेक्टर को कुछ तो सख्त होना ही चाहिए, अधिकारों के हनन का सवाल था। तत्पश्चात वह दोनों सीटों पर पांव फैलाकर बैठ गया, बस चल पड़ी। उसे अकेला बैठा देख बुढ़िया ने दोबारा कहा, बेटा क्या पता तुम्हारा दोस्त ना आए, क्या पता वह दूसरी बस में बैठ गया हो। लेकिन उसने बुढ़ी औरत की बात को अनसुना कर दिया। उसके मन में रह रहकर सुबह कॉलेज में मिली उस लड़की का, जो जीन पहने सब लड़कियों से ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी, ख्याल आ रहा था, काश वह लड़की मेरे साथ ड्राइव पर चलती। स्वीटी, क्या फराटे से इंग्लिश बोलती थी, उसे इंग्लिश बोलने वाली लड़कियाँ अच्छी लगती थी। कलेक्टर को भी तो सारा कामकाज अंग्रेजी में ही करना पड़ता है। अभी वह इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि अचानक झटके के साथ बस रुकी, जो मोड़ पर खड़ी एक लड़की ने हाथ का इशारा करके रुकवाई थी। जब सवारी ने बस के भीतर प्रवेश किया तो वह देखकर चकित रह गया। ईश्वर जब देता है तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। यह तो भी लड़की थी, जीन वाली, फराटे से अंग्रेजी बोलने वाली, जिसका वह अभी सपना देख रहा था। लड़की ने अंग्रेजी में ही पूछा, क्या उसके साथ वाली सीट खाली है? वह हकबका गया, इनकार का तो सवाल ही नहीं था। वह जानता था अगर वह इस जीन वाली लड़की को अपने पास बिठाएगा तो पास खड़ी उस बुरी औरत को बहुत तकलीफ होगी। लेकिन आदमी का स्टेटस भी तो कोई चीज होती है कि नहीं। खैर, जीन वाली लड़की उसके साथ सटकर बैठ गई। वह उससे बातें करने लगा। वह बीच बीच में बुढ़िया की ओर देख लेता था। उसे लगता था मानो बुढ़िया कह रही हो, कैसी है आज की युवा पीढ़ी, इसे माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं जानती। वह यह सब जानते हुए भी भावना के आवेश में बहने वाला नहीं था। भावना के आवेश में बहकर क्या आज तक कोई कलेक्टर बना है? वह सब कुछ त्याग सकता था लेकिन अपनी माँ का सपना नहीं तोड़ सकता था।
नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है कहानी समाज सेवी। लेखक हैं अश्विनी आहूजा। वह एक किराने की दुकान पर काम करता था। बेहद भला मानस वह शरीफ लड़का था, लेकिन दुर्भाग्य यह कि वह बेहद गरीब था। एक दिन किसी के बहकावे में आकर मालिक की गैर हाजिरी में कैश बॉक्स से 100 रुपया का नोट चोरी कर लिया। जब मालिक के नोटिस में आया तो उसने लड़के की पिटाई की। लड़का भला मानस व शरीफ था, कोई पुश्तैनी चोर तो था नहीं। थोड़ी सी पिटाई और पुलिस की धमकी से कांप गया और सब कुछ सच सच उगल दिया।
साहब क्या करता, माँ बीमार थी, उसके लिए दवा लानी थी।
साले दवा लानी थी तो मुझसे मांग लेता, तूने चोरी क्यों की?
गलती हो गई साहब, गलती हो गई।
लेकिन दुकानदार जानता था कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। उसने लड़के के घर के आसपास रहने वाले लोगों से पता करवाया। लड़के की माँ सचमुच बीमार थी। अगले दिन दुकानदार ने उसको माँ की दवा लाने के लिए 100-100 रुपए के 2 नोट दे दिए। लड़का खुश हो गया और दुकानदार का धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। उसी दिन शाम के वक्त लड़के ने दुकानदार के पास लौटकर उसके सब पैसे यह कहकर लौटा दिए कि उसे अब इनकी जरूरत नहीं रही। लड़के के साथ एक आदमी भी था। पूछने पर लड़के ने बताया कि वह एक समाजसेवी है जो उसकी माँ का इलाज करवाएगा और उसकी बहन को कॉलेज की फीस भी देगा अगर वह उसके यहाँ काम करने को राजी हो गया तो। दुकानदार को समाजसेवी की लड़के के परिवार पर हुई कृपा दृष्टि पर हैरानी तो हुई, लेकिन उसने अपने मन को समझाकर संतुष्ट कर लिया कि दुनिया में दानी, समाजसेवी और गरीब गुरबों के मसीहाओं की कमी नहीं है। दुकानदार समाजसेवी पर बहुत खुश हुआ और उसके लिए ईश्वर से दुआएं मांगने लगा। उसने लड़के को खुशी खुशी विदा किया। लेकिन एक ही साल बाद लड़के का समाजसेवी से मोह भंग हो गया और वह दोबारा उसी दुकानदार के पास नौकरी मांगने के लिए वापिस आ गया जहां पर वह पहले नौकरी करता था। लड़के की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। दुकानदार ने पूछा, यह तुमने कैसा हुलिया बना रखा है लड़के, तुम्हारी माँ ठीक हो गई क्या?
नहीं साहब, यहां से नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद ही माँ का देहांत हो गया था और अब तो मेरी बहन भी ने भी आत्महत्या कर ली है।
क्यों, ऐसा क्यों किया तुम्हारी बहन ने? दुकानदार ने हतप्रभ होकर पूछा।
ईश्वर को यही सब मंजूर था साहब जी।
क्या समाज सेवी ने तुम्हारे बहन का कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया? तुम्हारी माँ का इलाज करवाया था ना उसने?
हाँ साहब, ये सब तो करवाया था।
तो फिर उसने मेरी बहन को नरक के गर्त में धकेल दिया साहब।
मेरी बहन उसके बच्चे की माँ बन गई। तब मेरी बहन ने उससे कहा भी कि जो हो गया सो हो गया, अब आप मुझसे शादी कर लें। लेकिन समाज से भी कहने लगा कि वह तो पहले ही दो बच्चों का बाप है। उसकी यह बात सुनकर मेरी बहन को बहुत धक्का लगा और उसने आत्महत्या कर ली।